आप सबको नमस्ते। आज हम सब होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। होली द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग हार्वेस्टिंग, जिसके पुराने नाम है वासंती नवशश्येष्टी। ये फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग वसंत का भी उत्सव है और फेस्टिवल ऑफ कलर्स रंग का भी उत्सव है, जो आजकल हम सेलिब्रेट करते हैं। त्योहार को हिंदी में या संस्कृत में पर्व कहते हैं। पर्व का अर्थ होता है गांठ, जैसे बांस में या सुगर केन में, गन्ने में तो गांठ होता है, उसको संस्कृत में पर्व बोलते हैं उसको भी। अब पर्व का मतलब, जब आप काम कर रहे होते हैं, आपकी मूवमेंट चल रहा होता है, थोड़ी देर के लिए आप ठहर जाते हैं, ये जो ठहरना वो गांठ है। ठहरते क्यों है? वैसे ही जैसे दिन भर काम करके रात को आप सोते हैं। क्यों सोते हैं? रिफ्रेश होने के लिए, नई एनर्जी आए, नई ऊर्जा आए, अगले दिन सुबह फिजिकली मेंटली इंटेलेक्चुअली आप दोबारा रिफ्रेश होकर के काम पर जाएं। ये तो दिन और रात का है। इसी तरह महीनों में हमें ऐसे इस तरह के वातावरण की जरूरत है, जहां हम अपने आप को रिफ्रेश करें, हमारी एनर्जी को हम दोबारा चार्ज करें। इसी के लिए पर्वों का आयोजन होता है। और पर्व के लिए जो दूसरा शब्द हमारे यहां होता है त्योहार के लिए, तो पर्व के लिए जो हमारे यहां दूसरा शब्द यूज होता है उसे कहते हैं हम उत्सव। उत्सव मस्ती, मजा, लाइफ को एंजॉय करना। ऐसा नहीं कि आज के लोग ही मस्ती करते हैं, जब से मनुष्य पैदा हुआ तब से वो उसको एंजॉय करने की जरूरत है, क्योंकि हम मशीन तो है नहीं पशु कि सिर्फ काम करते जाएंगे, पशु पक्षी है नहीं कि खा पी कर सो जाएंगे तो रह जाएगा। मनुष्य में और भी बहुत सारे चीजें हैं, उसका ब्रेन है, इमोशंस हैं, उसको भी डील करना पड़ता है। आप किसी भी इंसान को खाना दे दो, अच्छा घर दे दो, तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा, उसके इमोशन को भी सेटिस्फेक्शन चाहिए। इसीलिए जो त्योहार हम मनाते हैं, जिसे हम उत्सव कहते हैं, पर्व, जहां आप थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं, खाली सोने के लिए नहीं, एंजॉय करने के लिए, एक्टिवली आप रेस्ट करते हैं। आपका वो जो रेस्ट करना होता है वो एक्टिविटी के साथ होता है, अब एंजॉय करते हैं। और हमारे पूर्वजों ने उन पर्वों को, ध्यान रखिए शब्द पर्व और उत्सवों को सेलिब्रेट करने के लिए, जो अलग अलग ओकेजन्स को चूज किया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ज्यादातर जो हमारे पर्व और उत्सव हैं वो रिलीजियस नहीं है, कुछ रिलीजियस हैं, कुछ स्पिरिचुअल हैं, बहुत सारे तो सोशियल इंपोर्टेंस रखते हैं, हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस रखते हैं, फैमिली इंपोर्टेंस रखते हैं, कुछ स्पिरिचुअल इंपोर्टेंस भी रखते हैं। पिछले बार हम शिवरात्रि मना रहे थे, इट वॉज ए प्योरली स्पिरिचुअल फेस्टिवल, पर आज का होली ठीक अपोजिट है, बाहरी दुनिया को एंजॉय करने का फेस्टिवल है। इसमें तीन चार चीजें जुड़े हुए हैं। पहली चीज, सर्दी के जो ठंड है अब वो गया, लोग परेशानी से बाहर आए, गर्मी अभी आई नहीं है, बीच में स्प्रिंग सीजन है। ये जो वसंत है, ये वसंत सिर्फ आपके अंदर नहीं होता है, प्रकृति के हर चीज में आपको ये स्प्रिंग झलकने लगता है, मस्ती का, खुशी का, सुंदरता का हर जगह झलकने लगता है। उसको वेलकम करना, स्वागत करना, और उसमें अपने आप को भी उस प्रकृति के साथ मिलके अपने लाइफ को भी एंजॉय करना, ये है होली का पर्व। होली फाल्गुन मास के कृष्ण प्रतिपक्ष में आता है। तो फाल्गुन कृष्ण प्रतिपद में, जो पूर्णिमा के अगले दिन हम होली सेलिब्रेट करते हैं। अगर इसकी हिस्ट्री हम देखें, प्राचीन काल में इससे हम वासंती नवशाश्येष्टि कहते थे। लंबा नाम से घबराने की नहीं, वासंती मतलब वसंत से रिलेटेड, वसंत मतलब स्प्रिंग, नव कहते हैं नया, शस्य कहते हैं फसल ग्रेन, इष्टि कहते हैं यज्ञ। तो जब घर में नया फसल आता है तब हमारे यहां एक ट्रेडिशन रहा है हमेशा कि कोई भी चीज हमारे घर में पहली बार हार्वेस्ट हो तो वो हम पहले ईश्वर को समर्पित करते हैं। और ईश्वर को समर्पित करने का सबसे बढ़िया तरीका जो हमारे ऋषियों ने मुनियों ने हमें सिखाया यज्ञ के द्वारा, क्यों कहते हैं अग्निर्वई देवाना मुखम। अब जो कुछ ईश्वर को सौंपोगे तो सामने रखोगे, कोई खाने वाला तो है नहीं, रखोगे फिर उठा के खुद खा लोगे, पर अग्नि में जो कुछ डालोगे वो स्वाहा हो जाएगा। तो ऋषियों ने कहा मानो अग्नि जो है देवताओं का मुंह है, जो भी तुम कुछ ईश्वर के लिए सौंपते हो अग्नि में सौंपो, न केवल अग्नि उसको स्वाहा कर देता है उल्टा और उसके साथ वातावरण को शुद्ध करता है, वो चीजें हजार गुना कर पहुंचाता है। तो जब जब हमारे घर में पहला हार्वेस्टिंग होती है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं यज्ञ के द्वारा, उसको नवशाश्येष्टि कहते हैं। एक नवशाश्येष्टि हम दीपावली जिसका नया फॉर्म है, और ये नवशाश्येष्टि वसंत ऋतु का है। वसंत ऋतु जो आषाढ़ी फसल होता है आषाढ़ में उगाए जाते हैं, और ये आषाढ़ का मतलब जून जुलाई में जो उगाए जाते हैं, और वो इस समय मार्च तक पककर आ जाते हैं, उसमें दलहन भी होते हैं, दाल वगैरह भी होते हैं, गेहूं जौ वगैरह भी होते हैं। उसको सेलिब्रेट करने के लिए यज्ञों के द्वारा जो सेलिब्रेट किया जाता है उसको नवशाश्येष्टि कहते हैं। आज भी आप देखेंगे होली के पहले दिन आप आग जलाते हैं, अघी जलाते हैं, वो अघी जला के उसमें धान गेहूं के वो डालते हैं उसके अंदर, वही है, यही यज्ञ का नवशाश्येष्टि का नया रूप है, मॉडर्न फॉर्म है। हम वो यज्ञ वाला रूप भूल गए, होली का जो प्राचीन रूप हम एक नए फॉर्म में उसको सेलिब्रेट करते हैं, परमात्मा को सौंपते हैं। और खाली इतना नहीं, और इसमें जो हम आहुतियां डालते हैं उस आहुतियों में एक विशेष तरह की चीजें डालते हैं, क्यों, ऋतु के अनुसार। जैसे आप मकर संक्रांति मना रहे थे, ठंड जब बहुत ज्यादा कड़क होता है तो उसमें हमारे पूर्वजों ने त्योहारों के साथ खाने पीने की भी व्यवस्था बनाई, क्या खाना उस समय खाना, तो उस समय प्रेस्क्राइब किया जाता है तिल खाओ, मूंगफली खाओ, गुड़ खाओ, जो बॉडी के अंदर हीट पैदा करे, गर्मी पैदा करे। वसंत अलग टाइप का सीजन है, वसंत स्प्रिंग है, यहां सब कुछ अच्छा होता है, और अच्छा सिर्फ आपके लिए नहीं, कीड़े मकोड़ों के लिए भी होता है, मक्खी मच्छरों के लिए भी होता है, बैक्टीरिया वायरस के लिए भी होता है, सबके लिए अच्छा होता है। तो बहुत सारी बीमारियां भी इन्हीं दिनों होता है, फ्लू होना, एनर्जी होना, स्किन डिजीज होना, सब कुछ इन्हीं दिनों होता है। तो इस त्योहार के साथ खाने पीने की व्यवस्था बनाई, वो जो खाना खाना होता है, जो खाना ये वसंत फंक्शन में खाया जाता है उसे होलक कहा जाता है, जहां से होली बनी। ये देखिए, ये स्लाइड देखिए, शब्द कल्पद्रुम में कहते हैं प्रणाग्निम भ्रष्टार्थ पक्व शमी धान्य होलक। ये होली शब्द आया कहां से? आजकल तो आपको वैसे ही सुनने को मिल जाता है कोई होली का राक्षसी थी प्रहलाद को बसाया, वो तो हिंदू लोग जब मूर्ख होते जाते हैं फिर कहीं कहीं से भी कहानी उठा करके रख देते हैं। होलक कहते हैं हाफ बेक्ड शमी ग्रेन को। ये जो शमी ग्रेन का मतलब होता है, ये जो फली वाले जितने अनाज होते हैं ना, जिसके अंदर फली होती है, जैसे दाल की चीजें होती हैं, या जिसके ऊपर एक छिलका होता है, धान है, जौ है, बाजरा है, या ये जो दाल की चीजें हैं, इसको शमी धान्य कहते हैं। ये फली वाले अन्न को जब थोड़ा सा अधभुना करते हैं, हाफ बेक्ड करते हैं, इसको होलक बोलते हैं। ये उस होलक का फेस्टिवल होने के कारण इसको होलिका कहा जाता था, होलिका धीरे धीरे होली में कन्वर्ट हो गया। उस होलक को खाया जाता था, वो जो यज्ञ में थोड़ा सा यज्ञ के बाद उसको हल्का पका करके हाफ बेक करके उसको खाया जाता था, जिससे कि वो ये जो ऋतु संधि के जो बीमारियां है, जो सीजन जब चेंज होते हैं, वो चेंज के कारण जो बीमारियां होती हैं, बीमारियों में हेल्प करता है। आयुर्वेद का भाव प्रकाश लिखता है, आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है भाव प्रकाश लिखता है, अर्धपक्व शमी धान्य स्तृण भ्रष्टे होलक होलको अल्पानिलो मेद कफ दोष श्रमापह। ये जो अर्धपक्व है, हाफ बेक्ड जो शमी धान्य है, ये जो छिलके वाले जो जो अनाज है, उनको जिसके ऊपर से छिलका निकाल करके जो उसके अंदर का जो ग्रेन है उसी को होलक कहते हैं। उस होलक को खाने से होता क्या है, तो आयुर्वेद का भाव प्रकाश लिखता है, जिसके अल्पानिलो मेद, आपकी मेद को चर्बी को कम करता है, फैट बढ़ाने में रोकता है, कफ दोष श्रमापह। ये जो कफ, जो स्प्रिंग सीजन के कारण जो कफ की बीमारियां, ठंड की, कोल्ड, एलर्जी वगैरह की होती है, उसको रोकने में हेल्प करता है। और श्रमापह, जो थकावट इन समय ज्यादा होता है, ये थकावट को भी दूर करता है। ये स्प्रिंग सीजन के कुछ प्रॉब्लम है, जल्दी नींद आती है, लेजीनेस आता है, टेंडेंसी ऑफ स्लीपीनेस, लेजीनेस, ये सब स्प्रिंग सीजन के में स्वाभाविक रूप से सबको आता है। और ये जो होलक है वो खाने से ये आपको हेल्प करता है लाइट फील करने के लिए, नींद कम करने के लिए, इवन बहुत सारे जगह तो स्किन डिजीज भी नींद इनो होते हैं इसको रोकने के। और ये जो बीमारियां, इसको हमारे आयुर्वेद में कहते हैं ऋतु संधि की बीमारियां। ऋतु समझते हैं, सीजन होते हैं, वसंत शीत, शीत गया वसंत आया, वसंत जाएगा गर्मी आएगी, तो जो बीच में जो कुछ दिन होता है इसको ऋतु संधि कहते हैं, संधि अंग्रेजी में आप कहते हैं, जो सीजन चेंजेस होते हैं, तो सीजनल चेंजेस जब होते हैं तो उसमें कारण बीमारियां आती है, बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। इसीलिए जब जब भी ऋतु संधि में कोई फेस्टिवल होता है, हमारे पूर्वजों ने ऐसे खाने पीने की, पकवान की, प्रसाद की व्यवस्था की जो आपको उस समय की हेल्थ के लिए अच्छा हो। और वसंत में जो खाने की प्रिस्क्रिप्शन है वो होलक है, उसी के कारण से इस फेस्टिवल को हम होली कहते हैं। होली एक और एक बड़ा खूबसूरत पर्व के रूप में सेलिब्रेट होता है, उसे हम कहते हैं वसंत उत्सव, वसंत स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। आप दुनिया में किसी भी देश में जाइए, आप यूरोप जाओ, अफ्रीका जाओ, अरब जाओ, जापान जाओ, इंडिया जाओ, कहीं रशिया जाओ, कहीं भी जाओ, सब जगह आपको स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग फेस्टिवल होता है। भारत में भी होता था। और ये वसंत उत्सव, इस वसंत को सेलिब्रेट करना, इतना खूबसूरत सीजन, वेदर बहुत कम होता है, साल में एक बार आता है, इसी को सेलिब्रेट करने का नाम होता है। और सेलिब्रेशन आप सिर्फ नहीं करते हो, नेचर करता है, फूल के पौधे फूलों से भरे हुए होते हैं, फल आने वाले फल आ जाए गए होते हैं, जमीन के पानी साफ दिखता है, ऐसा लगता है मानो पूरी प्रकृति नाच रही होती है, खुशी मना रही होती है। और किसकी खुशी, रंगों की खुशी मना रही होती है, कहीं काला फूल है, कहीं सफेद है, कहीं कहीं लाल है, कहीं पीला है, ये रंगों से भरा हुआ नेचर हो जाता है। हमने तो सिर्फ प्रकृति को नकल करना होता है, जैसे प्रकृति अपने रंगों से भरी हुई होती है इस सीजन में, इस महीने में, इसी तरह मनुष्य भी अपने आप को रंगों से भर दे। हमारा जीवन भी तो कलरफुल है ना, ये व्हाइट एंड ब्लैक थोड़े ही होता है कि बस सुख है दुख है, नहीं, लाइफ में हजारों शेड्स होते, अच्छा है बुरा है बीच का है ना। इसीलिए इस प्रकृति को देखो, आजकल जाओ पहाड़ों में देखो, झरनों में देखो, नदियों में देखो, जंगलों में देखो, गांवों में देखो, शहरों में देखो, सब जगह प्रकृति नाच रही होती है। तो अपने आप को उसी तरह रिफ्रेश करना, अपने अंदर भी वो फूल खिलाने होते, हमारे अंदर भी वो कलियां खिलानी होती है, हमारे अंदर भी वो रंग भरना होता है। नीरस व्यक्ति जो खुद अपने जीवन में दुखी हो तो दूसरों के जीवन में क्या सुख लाएगा। अगर आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हो तो दूसरों को क्या लाइफ को एंजॉय कराओगे। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो आप दूसरों के जीवन में क्या अच्छा करोगे। इसीलिए प्रकृति की ये सीख है कि तुम भी कलरफुल बनो, और तुम नहीं भी बनोगे तुम्हें प्रकृति मजबूरन कलरफुल बनाता है, क्योंकि तुम्हारा लाइफ ही फुल ऑफ कलर्स है। या हर कलर तुम्हारे लाइफ में है, सुख है, दुख है, खुशी है, गम है, कभी गेन होता है तो कभी लॉस होता है, कभी निंदा होती है तो कभी प्रशंसा होती है, कभी हम किसी से मिलते हैं तो कभी बिछुड़ते हैं, कुछ कुछ नहीं होता है, कभी नॉर्मल है, कभी हम वैसे ही सैड हो जाते हैं, कभी वैसे ही खुश हो जाते हैं, हजारों शेड हैं, और ये शेड ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। आपके जीवन में भी लाल है, पीला है, काला है, हरा है, सब कुछ है। उन कलरों को समझने की जरूरत है। हम तो पूरी जिंदगी बिता देते हैं दो ही कलर समझ के अपने लाइफ में, एक तो मैं दुखी हूं, एक तो मैं सुखी हूं, एक तो मुझे सुख चाहिए, एक तो दुख नहीं चाहिए। भूल जाते हैं दुख सुख के अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ होता है जिसके अंदर हम ढूंढ सकते हैं। जिन लोगों ने लाइफ को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर रखा है वो जिंदगी भर वैसे ही रहेंगे, और जिन्होंने कलर भरा है, रंग भरा है होली के रंगों की तरह, उनके जीवन में हर तरह की चीजें आएंगे, और हर कलर को एंजॉय करना जरूरी है। काला हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, पर काले का आपके जीवन में काला आएगा। रात को अंधेरी तो अंधेरा तो आता है, आपको अंधेरा अच्छा लगता है नहीं लगता है मैटर नहीं करता, अंधेरा को आना ही आना है। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आपका अंधेरे से एंजॉय करते हो कि अंधेरे से नफरत करते हो। आप ऐसा कुछ करो अंधेरे भी में भी आप एंजॉय कर सको, नहीं तो फिर रात भर रोते रहना अंधेरा क्यों है। जीवन में परेशानियां आएंगे, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है परेशानियों को तुम कैसे झेलते हो। या तो परेशानियों को अपने अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट करो, या फिर रोते रहो। कलर्स तो आएंगे, अच्छा तो आएगा, बुरा तो आएगा, साइक्लिक मोड में आते रहेंगे। और रंग जीवन का, जीवन जो रंग है वो जीवन को का सिंबॉलिक वे में प्रेजेंट करते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने जो लाइफ को जीने के लिए जो तरीका हमें बताया उसका बड़ा खूबसूरत नाम है वर्णाश्रम व्यवस्था। देखिए हर व्यक्ति के एस्पिरेशंस होता है ना कि मुझे संसार में हर तरह के सुख चाहिए, और उन सुखों को हमने चार तरह से बांटा। कुछ सुख हमें मिलता है धन प्रॉस्पेरिटी से मिलता है, उसको हम कहते हैं अर्थ। कुछ सुख हमें मिलता है जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, दूसरों के लिए भला करते हैं, कुछ दया दिखाते हैं, क्षमा दिखाते हैं, अहिंसा दिखाते हैं, सिंप्लिसिटी रखते हैं, तो अच्छी चीजें जो वर्चुअस है, वैल्यूएबल है, जो मोरालिटी है, हर व्यक्ति चाहता है। बुरा से बुरा आदमी भी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है, आपके साथ नहीं कर रहा होगा बुरा आदमी कहला, पर वो किसी ना किसी के साथ तो अच्छा करना चाहता है। जो आपके लिए बुरा किसी के लिए अच्छा, जो किसी के लिए बुरा आपके लिए अच्छा, वो चाहता है कुछ अच्छा करना, उसी को हम कहते हैं धर्म। ये भी ह्यूमन नेचर है। तीसरा, हर व्यक्ति की ये एस्पिरेशन है टू फुलफिल देयर सेंसुअल डिजायर्स, शरीर की इंद्रियों की भूख को फुलफिल करना। हमारे ऋषियों ने इनको नकारा नहीं, बोला ये छी गंदा, ये सब पापी लोग करते हैं, सीन है, ऐसा कुछ नहीं कहा। रिस्पेक्ट किया, एक्सेप्ट किया, बोला एंजॉय करो। फिर हर व्यक्ति ये भी तो चाहता है, मुझे फ्रीडम चाहिए, किससे, दुखों से, परेशानियों से। और दुख तो अकेला नहीं आता है, दुख सुख मिलके आते हैं, द साइकिल ऑफ पेन एंड प्लेजर, दुख और सुख का चक्र है, छुटकारा चाहिए। उस एब्सोल्यूट फ्रीडम फ्रॉम दैट साइकिल ऑफ सुख एंड दुख, उसी को हम मोक्ष कहते हैं। ये हर व्यक्ति ये चारों को चाहता है, और हमारे ऋषियों ने इसको समझा ये आजकल के बाबाओं की तरह नहीं कि ये पाप है, दुनिया तो माया है, छोड़ो। नहीं, ऋषि तो ज्ञानी थे, समझदार थे। बोले चारों को तुम्हें पाने की इच्छा है तो चारों को भोगो। ये चार अलग अलग कलर है और इन कलरों में भी काफी सारे दूसरे कलर भी आएंगे, फिर कैसे भोगोगे? बोला लाइफ को डिवाइड करके भोगो। ये जो वर्ण और आश्रम क्या है, आश्रम व्यवस्था लाइफ स्टेजेस है। एक पर्टिकुलर एज में एक पर्टिकुलर कलर को ज्यादा यूज करो, दूसरे एज में उसको कम कर देना, दूसरा कलर यूज करना, पर जब तक मरोगे तब तक सारे कलर यूज करके ही जाना। बड़े मजेदार बात बता, ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, ये वर्ण में वर्ण शब्द है। संस्कृत में रंग को, कलर्स को वर्ण बोलते हैं। अब वर्ण का ये भी अर्थ है कि जो जो आपने प्रोफेशन या जो सोशल जो क्लास आपने चूज किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसको भी वर्ण कहते हैं। उसमें भी रंग है, तुम कौन सा रंग चुनते हो, है ना, वर्ण करते हो। ये वर्णाश्रम क्या है? लाइफ के हर शेड को, लाइफ के हर जो भी आने वाली चीजें हैं उन सबको एंजॉय करना सीखो। स्टूडेंट लाइफ में कष्ट सहना सीखो, ये भी एक कलर है। सैक्रिफाइस करो। गृहस्थी आदमी एंजॉय करता है, घर के बच्चे पढ़ाई लिखाई में बिजी है, टीवी नहीं देख सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, ये रूल फॉलो करो, सुबह इतने बजे उठो, स्कूल जाओ, खेलो कूदो, डांस करो, स्विमिंग जाओ, बिजी लाइफ है, बच्चे नहीं पसंद करते। बट दिस इज वन ऑफ द मेनी कलर्स। अगर आप कोई भी कलर मिस करके उसका कॉन्सिक्वेंसेस आगे आपको भोगना पड़ता है। यही है कलरफुल लाइफ। जीवन में हर तरह की चीजें आते हैं, उनको भोगना पड़ता है। और कलरों की अपनी एक स्पिरिचुअलिटी है। सारे कलर सफेद से पैदा होते हैं। जब सब कलरों को आप मिला देते हो रंगों को, तो ब्लैक हो जाते हैं। ये तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, सफेद है, श्वेत है ना। और आत्मा जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है। आपकी जो लाइफ है, पर्सनालिटी है, उसमें आत्मा ही तो है जो कोर है, जो सफेद है, उसे सब रंग निकलते हैं। और जब सब रंग समा जाते हैं तो ब्लैक हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डे द लाइफ इज अबाउट व्हाइट एंड ब्लैक, काला और सफेद। पर उन काले और सफेद को लेकर आप जी नहीं सकते हो ना, आपका लाइफ वैसा है भी नहीं है, इसमें तो भरा पड़ा है कलर। जब तुम्हारा माइंड व्हाइट होता है, कब होता है तुम्हारा माइंड व्हाइट? जब तुम्हारा कॉन्शियस प्योर होता है, जब तुम पीसफुल होते हो, जब तुम खुश होते हो, या थोड़ी ऊपर उठते हो, जब तुम मेडिटेटिव मोड में होते हो तो तुम सफेद होते हो। जब तुम बहुत दुख में होते हो, परेशानी में होते हो, टूटा हुआ होते हो, ब्रेकडाउन हो जाता है, तो तुम काले रंग को एंजॉय, काले रंग में होते हो। पर जीवन तो ये नहीं ना, जीवन इसके बीच में भी है। वो तो काले और सफेद के बीच में हजारों शेड हैं, हजारों शेड हैं। उन सब शेड्स को हमें एंजॉय करना चाहिए। आप कहेंगे मैं क्यों एंजॉय करूं? मत करो, आएगा। पर होली में बाहर निकलोगे, कोई ना कोई रंग तो लगा ही देगा। पर अच्छा ही है कि बाहर निकल रहे हो तो मान के चलो कि रंग लगेगा। अगर रंग लगाने को तैयार नहीं हो तो बाहर मत निकलो। अगर रंगों को एंजॉय नहीं कर सकते हो तो पैदा मत होना। पैदा हुए हो तो रंग तो आएंगे, लगेंगे। तुम कितना झेल पाते हो वो डिपेंड करता है तुम मेंटली अपने आप को कितना प्रिपेयर रखे हो। और फेस्टिवल तो चलता रहता है, ये नॉन स्टॉप है। और जो स्पिरिचुअल पर्सन है, जो जितना स्पिरिचुअलिटी में डूबता है ना, उसका रंग तो उसकी तो ज्यादा कलरफुल होता है। अच्छा, पब्लिक परसेप्शन बिल्कुल उल्टा है। पब्लिक परसेप्शन है कि व्यक्ति जब बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है तो खड़ुश मुंह लेकर घूमता है, दुखी दुखी सा मुंह लेकर घूमता है, बड़ा गंभीर दिखता है। पर रियलिटी ठीक उल्टी है। जितना व्यक्ति स्पिरिचुअली एडवांस्ड करता है उतना वो खुश मिलता है, रंगीन मिलता है। रंगीन का मतलब खुश मिलता है, एंजॉय करने वाला मिलता है हर चीज में, है ना, गोबर में भी, सोने में भी। वो रविंद्रनाथ टैगोर की एक खूबसूरत कहानी है। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि लिखने के बाद उनको नोबेल पुरस्कार मिला तो वो खुश थे, सेलिब्रेशन हुआ। और गीतांजलि क्या है, कभी मौका मिले सबको पढ़ना चाहिए, हर भाषा में ट्रांसलेटेड है। मेनली उपनिषदों की जो एक जो विषय है उसी का एक तरह के रिफ्लेक्शन है गीतांजलि में, हायर स्टेज ऑफ लाइफ। अगर सेक्युलर वे में स्पिरिचुअलिटी कहने में शर्म आता है, आप कह सकते हैं हायर कॉन्शसनेस की बातें। बड़े खुश थे, प्रसन्न थे, पर उनके घर के सामने एक बुजुर्ग रहता था, रिटायर्ड है वो, तो रोज बरंडे में आकर के बैठ जाता था डंडा लेकर के, छड़ी लेकर के। जब भी रविंद्रनाथ बाहर निकलते थे पूछता था, ये जो तुमने लिखा है गीतांजलि में उसको समझते हो? रविंद्रनाथ कुछ कह नहीं सकते। कोई इंटेलेक्चुअल होना, फिलोसफर होने का मतलब थोड़ी है कि आपने उसको रियलाइज किया हो। वो झूठ बोल नहीं सकते थे क्योंकि सामने जो बैठा है बुजुर्ग उसको देखते ही झूठ बोलने को हिम्मत नहीं होता है। और कोई होता तो बोल देते थे, हाँ जी जानता हूं, रियलाइज करता हूं, पर वहां हिम्मत नहीं हो पा रही थी। उस बुजुर्ग की आंखों में चमक, उसकी बोलने में, उसकी जो वाणी में जो दम है, देख करके घबराहट होती है, पता नहीं ये व्यक्ति कहीं पकड़ ना ले, बोल नहीं पाते थे तो शर्म चुपचाप चले जाते थे बिना आंसर दिए। पर वो बुजुर्ग है कि छोड़ने वाला नहीं, जब मिले तो पकड़े, जो लिखे वो जानते हो वैसे ही लिख दिया। रविंद्रनाथ इतना परेशान हुए, अब जब भी घर से बाहर निकले देखते थे बुजुर्ग बैठा तो नहीं है, ना हो तो फट से निकल जाते थे। एक दिन दिन में खूब बारिश हुई, बहुत बारिश हुई। बारिश के बाद धूप खिल गया, सूरज की रोशनी खिलखिलाहट के साथ सब जगह रोशनी कर रहा है। रविंद्रनाथ टहलने के लिए बाहर निकल गए। ठीक बारिश के बाद बाहर निकल गए धूप में, रोज सेम दृश्य देखते हैं, पर उस दिन कुछ उनको अलग सा दिखा, रंग दिखे। सूरज की रोशनी उस कीचड़ में भी उतना ही चमकदार पड़ा है जितना साफ पानी में है, वो फूलों के पौधों में भी उतना ही सूरज की रोशनी चमकती है जितने गंदे कीचड़ में, वो तालाब में वही सूरज की रोशनी उतनी ही चमकती है जितना नदी में, वो झोपड़ी के ऊपर सूरज ऐसा ही चमकता है जिसका कोई पक्का कंक्रीट के बिल्डिंग में। ये तो कोई नई बात नहीं है, नेचर में तो हमेशा होता है, और हमारे साथ भी यही होता है। हम रोज सेम चीजों को देखते हैं, कुछ रिएक्शन नहीं होता है, कुछ एक्स्ट्रा फीलिंग नहीं होती है। पर कभी कभी हमारे अंदर के भी वो एनलाइटनमेंट का भाव जग जाता है, हम वो सेम चीज रोज देखते हैं, उस दिन वो कुछ हमें अलग दिखता है, कुछ अलग सीख दे जाता है। पता नहीं शायद रविंद्रनाथ के अंदर वो बुजुर्गों का जो ताना सुन सुन के इतना ज्यादा वो अंदर से अलर्ट हो गए थे, उस दिन उनको कुछ अलग सा फील हुआ। इस सूरज की रोशनी कीचड़ में भी वही गिरता है, वही सूरज की रोशनी साफ पानी में भी, नदी में भी वही, तालाब में भी वही, झोपड़ी में भी वही, बड़े बिल्डिंग में भी वही, गरीब में भी वही, धनी में भी वही। उनको लगा कुछ समझ में आया उपनिषद की दर्शन। वापस आए उस दिन, आप वापस आने के बाद घर के अंदर नहीं गए, खड़े रहे, कहीं बुजुर्ग दिख नहीं रहा, क्योंकि आज उनको जवाब मिल गया था, जवाब देना था। आज वो सच बोलना चाहते थे कि मैं जानता हूं जो मैंने लिखा है, बुजुर्ग था नहीं, वो इंसिडेंटली, तो वो वेट करते रहे, इंतजार करते रहे। थोड़ी देर के बाद बुजुर्ग बाहर निकला तो रविंद्रनाथ मुस्कुरा करके तान करके खड़े रहे। बुजुर्ग ने देखा, कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, आप आज पूछोगे? नहीं। क्या पूछूं? कि तुमने जो लिखा है उसको रियलाइज किया कि नहीं? क्यों पूछूं ना, आप हमेशा पूछते थे। पूछता था कि मैं जानता था कि तू नहीं जानता है, आज नहीं पूछूंगा, तेरे चेहरा बता रहा है कि तू जानता है। पर अगर बताना है बता दे, तूने क्या क्या रियलाइज किया है आज? यही कि वो जो सर्वोच्च सत्ता है, जो सुप्रीम एग्जिस्टेंस है, सब में है, तुम में भी मुझ में भी। यही तो उपनिषद की वाणी है। पर वो सब में है, एक रूप में नहीं दिखाई देता। रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव, वो फूलों में भी वही है, काले फूल में भी, सफेद फूल में भी। वो ईश्वर जब सब में कण कण में होता है, वो सर्व रूप में होता है। यही तो होलिका भी है ना, हर रंग को एंजॉय करो। वो ब्रह्म भी, परमात्मा भी हर रंग में आपको दिखेगा, नेचर के हर शेड में आपको दिखेगा। बस देखने की शक्ति होनी चाहिए, अंदर की शक्ति होनी चाहिए। आज मैंने फील किया सूरज की रोशनी से फील किया। तो जब आप उस स्पिरिचुअलिटी के उस स्टेज पर पहुंच जाते हो, फिर आपका जीवन रोज होली हो जाता है ना। फिर आप रोज उस रंगों को, अलग अलग रंगों को फील करते हो ऊपर से। कोई रंगों को दुखी होकर के लगाता है, तो कोई सुखी होकर लगाता है, कोई डिटैच्ड होकर लगाता है। खेलने दो बच्चों को, खेल रहे हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं भी उनके साथ हूं। ये हुआ कि आप डिटैच्ड होकर खेलते हो। किसी को लगता है कि होली खेलते ही वो एंजॉय करता है, आप एंजॉय होकर करके होली खेलते हो। किसी को दुखी होता है, कलर क्यों मेरे साथ लगा। पर जो स्पिरिचुअल पर्सन है, वो लाइफ को हर कलर उसके अंदर आने देता है, पर डिटैच्ड होकर के। और जो आम जनता है, वो एंजॉय करता है, दुखी भी होता है। पर ये हमारे ऊपर है, कलर तो आएगा, रंग तो आएगा। और ये होली हमें वही मैसेज देता है, कलरों से दूर मत भागो, रंगों को एक्सेप्ट करो, जीवन के अलग अलग रंगों को एक्सेप्ट करो। सिर्फ तुम्हारे जीवन में नहीं, दूसरों के जीवन में भी थोड़ा रंग भरो। बहुत लोगों के जीवन में सफेद और कालापन बहुत है, बहुत लोगों के जीवन में तो सफेद भी नहीं है, कालापन ही कालापन, मतलब दुख ही दुख है। बहुत कष्ट में लोग जीते हैं। हो सकता है हमारे पड़ोस में हो, हमारे आसपास हो, जिनको जरूरत है। जब हम फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी के घर में खाने के लिए चूल्हा नहीं जल रहा हो, कोई बीमारी में तड़प रहा हो, किसी के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हो, ये भी हमारा ही काम है। होली का ये भी तो एक संदेश है, सोशल ब्रदरहुड। एक दूसरे से सेलिब्रेट करो, एक दूसरे से शेयर करो। मिठाई शेयर करते हैं, सुख दुख शेयर करते हैं, रंग शेयर करते हैं। जीवन में हर त्योहार के लिए हमें ये भी, हर त्योहार में कुछ बजट हमारा अलग होना चाहिए। उस समय आप करें ना करें, वो अलग होना चाहिए उन लोगों के जीवन में रंग भरने के लिए, दिवाली में उन लोगों के जीवन में रोशनी लाने के लिए, होली में उन लोगों के जीवन में थोड़ा कलर लाने के लिए। ये हर व्यक्ति को, जिसको भगवान ने कुछ दिया है, उसका एक ये निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। जिस भी लेवल से, पैसे के दृष्टि से, शारीरिक रूप से, मेंटली, फिजिकली, सोशियली, जहां भी हम किसी के जीवन में कुछ रंग ला सकते हैं, किसी के जीवन में कोई रोशनी ला सकते हैं, वो हमें जरूर करते रहना चाहिए। ये भी हमारे पर्वों का एक बहुत बहुत पवित्र भाव है, और जिसे हमें बताने की भी जरूरत है, हमारे बच्चों को भी बताने की जरूरत है, हमें भी समझने की जरूरत है और याद रखने की जरूरत है। और एक चीज इस होली के साथ जुड़ा हुआ है, साउथ इंडिया में होली कलर फेस्टिवल ऑफ कलर के रूप में इतना सेलिब्रेट नहीं होता। फेस्टिवल इसमें उसका नाम, साउथ इंडिया में इस होली का नाम होता है जो फेमस है, काम दहन या मदन दहन के रूप में। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है। काम जानते हैं, सेक्सुअल प्लेजर, मदन भी उसको कहते हैं। और पुराणों में सेक्सुअल डिजायर को एक पर्सोनिफाइड फॉर्म दिया, कामदेव, दहन जलाना। पुराणों में कहानी आती है, पर उस कहानी को अगर आप उसके मैसेज को देखें, बहुत बहुत सुंदर और गंभीर मैसेज देता है। मैसेज है कि शिव तपस्या में बैठे होते हैं, तपस्या करते हैं, ब्रह्मचारी हैं, योगी हैं, शादीशुदा भी हैं। शिव पुराणों में जिस शिव के वर्णना है वो शिव गृहस्थ है पर योगी भी है। ये मैसेज हम भूल जाते हैं जब हम इवन पौराणिक देवताओं को भी जब आप मानते हो उनके चरित्र को, उनका मैसेज हम नहीं ले पाते। ये बड़ी आयरनी है, शिव गृहस्थ है पर योगी है। योगी तपस्या में बैठा है। कहानी है कि कामदेव को भेजा गया देवताओं के द्वारा कि शिव के तपस्या को भंग करो, उनकी जो ब्रह्मचर्य का खंडन करो। तो काम देव कोशिश करता है शिव के अंदर वो भाव पैदा करने के लिए। तो शिव का तपस्या जब टूटता है तो उसको वो गुस्से में जला देते हैं। यही है कामदेव, काम दहन की माइथोलॉजिकल स्टोरी। पर मैसेज क्या है कि जो स्प्रिंग सीजन है, अच्छा वो काम दहन फेस्टिवल इसी होली के साथ होता है, पर इसका एक बहुत बड़ा कंटेम्परेरी भी कनेक्शन है। जो स्प्रिंग सीजन होता है ये सिर्फ मनुष्य नहीं, बहुत सारे प्राणियों के अंदर भी इन्हीं दिनों ये फिजिकल जो डिजायर है, जो शारीरिक भूख है, उसको भी बढ़ाता है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। ये स्प्रिंग सीजन ही होता है, इसलिए कहते हैं जो वसंत है जवानों का सीजन होता है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, नियंत्रण करने की जरूरत है। और अगर आप स्पिरिचुअली होली मना रहे हैं तो आपको उस पर कंट्रोल पाने की जरूरत है, 100% कंट्रोल पाने की। जब आप काम पर कंट्रोल पाते हैं तो आप शिव बन जाते हैं ना, शिव मंगलमय, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी बन जाते हैं। होली का और एक खूबसूरत सिग्निफिकेंस है और वो है सामाजिक बंधुत्व, जो सोशल बॉन्डिंग है। हर कोई खेलता है ना होली। जब होली आता है, आप किसी गांव में हैं या भारत में किसी शहर में है, किसी कॉलोनी में है, उस समय कोई देखता है ये बड़े घर का है, ये छोटे घर का है, ये छोटे जात का है, बड़े जात का है। सब जातें मिट जाती हैं, सब छोटा बड़ा मिट जाता है, हर कोई खेलता है, सेलिब्रेट करता है। और ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ये होली का मैसेज साल भर चलते रहना चाहिए। ये नहीं कि होली के दिन तो रंग लगा दिया उसके बाद फिर हम अलग हो गए। कोई कास्ट, कोई क्लास, कोई मनी, प्रोफेशन मैटर नहीं करना चाहिए सोशल लाइफ में। हर इंसान प्रभु का संतान है, वो छोटा है या बड़ा है, धनी है या गरीब है, ज्ञानी है या मूर्ख है, अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, हर व्यक्ति ईश्वर का संतान है, अमृतस्य पुत्र सर्वे। पर हमारे से होता नहीं है, हम हमारे सोशल स्ट्रक्चर ताना बना ऐसा बना हुआ है। हम ऊपर से कितना भी बढ़िया बढ़िया बात बोलें, हम सब अंदर से जातिवाद से फंसे पड़े हैं। हम अपने धन दौलत ज्ञान से के घमंड से पड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं हम फंसे रहते हैं, जिसे हम लोगों को उस दृष्टि से देखते हैं, दूर की दृष्टि से देखते हैं। होली का ये खूबसूरत संदेह है, सबको बराबर में देखो। रविंद्रनाथ की भाषा में सूरज की रोशनी की तरह सब में पढ़ना सीखो, कीचड़ के साथ भी वैसा ही उतना ही प्यार करो जितना साफ पानी के साथ करते हो, झोंपड़पट्टी में उतनी ही रोशनी पड़ती है जितना किसी बड़े बिल्डिंग में पड़ता है, तुम्हारा जीवन में वैसा ही होना चाहिए। गरीब से भी उसी तरह व्यवहार करो जो धनी से करते हो, बहुत बड़े पावरफुल व्यक्ति को उतना ही रेस्पेक्ट दो जितना किसी तुम्हारे घर में नौकरी चाकरी करने वाले को रेस्पेक्ट देना सीखो। जब सीख जाओगे तुम स्पिरिचुअल बनोगे नहीं बनोगे नहीं पता, पर एक अच्छा इंसान बन जाओगे, एक अच्छा अच्छा इंसान। ये अच्छा ही कम होती जा रही है, खास करके हमारे इंडियन सोसाइटी में हमारी हिपोक्रेसी बहुत बहुत ज्यादा है, इस पर हमें काम करने की जरूरत है। इतने खूबसूरत फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं, इतना खूबसूरत मैसेज के साथ करते हैं, थोड़ा हमें उससे ऊपर उठने की जरूरत है। हमें सबको आदर करने की जरूरत है, सबको बराबर देखने की जरूरत है, सबके प्यार करने की जरूरत है। दो चार चीजें होली में के साथ कंक्लूड करेंगे। हम दूसरों के जीवन में भी रंग भरना सीखें, पर उससे पहले हम खुद के जीवन को भी रंगीन बनाना सीखें। रंगीना बनाए ना बनाए रंग तो आएगा, उन रंगों को एक्सेप्ट करना सीखें, और एक्सेप्ट करते करते अगर एंजॉय किए इससे तो अच्छी बात और कुछ नहीं। और दूसरों के जीवन में भी थोड़ा रंग भरना सीखें, जैसा भी आप रंग भर सकते हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, सोशियली, जो भी रंग भरें। खुद खुश रहना सीखें, दूसरों को तभी खुश रखेंगे ना जब आप खुश रहो। इसका पति हमेशा दुखी रहता है वो कहा क्या अपनी पत्नी को खुश करेगा, जिसकी पत्नी हमेशा दुखी रहती है तो वो अपने पति को क्या खुश रखेगी, जिसके माँ बाप दुखी है तो बच्चों को क्या खुश रखेगा, जिसके बच्चे दुखी हैं माँ बाप को क्या खुश रखेंगे, जब आपका परिवार में सब परेशान है तो पड़ोसी को क्या खुश रखेंगे। खुश रहना सीखें, खुश रहना एक आर्ट होता है, स्टेट ऑफ माइंड है। परेशानी में भी हम खुशी ढूंढ सकते हैं, उसके लिए काम करना पड़ता है। डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्योंकि ये कोई सबको अपने आप हो जाएगा, ये समझ में आता है, इट्स डिफिकल्ट। जब आप परेशानी में हैं खुशी कैसे रहेंगे, पर अगर हम कोई इंटेलेक्चुअली समझदारी के साथ अगर इसको हम कल्टीवेट करें तो हम काले रंग में भी खुशी मना सकते हैं, नीले में भी मना सकते हैं, हरे में भी मना सकते हैं, लाल में भी मना सकते हैं। बस थोड़ी मेंटली हमें प्रिपेयर होने की जरूरत है। तो जीवन में अपने जीवन में भी खुशी भरें, दूसरों के जीवन में भी खुशी भरें, यही होली का मैसेज है। नवशेष्टी यज्ञ के रूप में परमात्मा के प्रति थैंकफुल बने, वसंत उत्सव के रूप में प्रकृति को देखें, एंजॉय करें, कुछ सीखें, रंगोत्सव में अपने जीवन को रंगों से भरे, दूसरों के जीवन में भी रंग भरे, और काम दहन में अपने सेंसुअल डिजायर को कंट्रोल करें। ये सब होली के अलग अलग रंग है, सब रंगों को जीवन में रखें। होली आपके लिए शुभ हो। फिजिकली खेल सकते हैं तो जरूर खेलें, गंदा ना खेलें, अच्छा खेलें, लोगों को खुश करने के लिए रंग लगाएं, तड़पाने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं। खुद भी रंगों को एंजॉय कर सकते हैं तो करें, जीवन में रंगों को एक्सेप्ट करें। ये होली का मैसेज। आप सबने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज मुझे पता नहीं कोई अनाउंसमेंट के लिए कोई है कि नहीं। आज आर्य समाज में भी होली खेली जा रही है, बहुत लोग यहाँ आए हुए हैं, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर रहे हैं, तो जो यहाँ है उनको भी शुभकामनाएं, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में रंगों से भरे रहें, इसी भाव के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।